प्राणायाम करने में पहले बलराम जी को प्रणाम किए, बड़े भाई को पहले करना चाहिए, कुछ सिस्टम है, विधि है, तो पहले बलराम जी को किए। देखिए यहाँ वर्णन है, दंडवत राम कृष्ण योग, बलराम जी को पहले प्रणाम किए, इसलिए राम का नाम पहले है, कृष्ण का नाम बाद में। मतलब दोनों भाई ऐसे खड़े थे, लेकिन बलराम जी के प्रति उनकी ज्यादा प्रणाम करने में दृष्टि, दर्शन में कृष्ण प्रधान था, और प्रणाम करना हुआ तो बलराम जी का नाम पहले दिया जा रहा। तो प्रणाम करके फिर झुक रहे थे, हाथ जोड़ करके, जैसे ऐसा लगता था कि छूने लायक नहीं है, तो इसीलिए संकर्षण ने संकर्षण किया, खींचा, और वे भी जैसे कृष्ण आलिंगन किए थे ऐसे आलिंगन किए। आलिंगन करने के बाद इसके बाद दोनों भाई श्री अक्रूर जी को लेकर के घर चले। प्रधान थे बलराम जी, यही मनोरथ भी उन्होंने किया था कि क्या कृष्ण के अग्रज हमारी बाह पकड़ करके घर ले जा करके मेरा स्वागत करेंगे और कुशल समाचार पूछेंगे अपने माता पिता का, कंस क्या कर रहा है। इसीलिए श्रील सुखदेव को स्वयं वर्णन करते हैं, गृहित्वा पाणी ना पाणी अनेक सामुजी। श्री बलराम जी के लिए यह महामना शब्द का प्रयोग किया गया। महामना शब्द का अर्थ है कि कृष्ण भक्तों के प्रति अतिशय स्नेह के कारण भगवान बलराम जी का मन बहुत उदार रहता है, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण का भक्त आया, ये बहुत प्रसन्न हुए, उनका चित्त खिल गया महान। तो गृहित्वा पाणी ना पाणी सानुजो अमित सानुजो भी, सानुज अनुज के साथ अक्रूर जी का हाथ पकड़े। तो कर्म में दो हाथ दिया गया है, पाणी, और जो हाथ पकड़ा हुआ है उसको पाणी ना कहा। गृहित्वा पाणी ना पाणी, पाणी से हाथ से उनके दोनों हाथ पकड़े, लेकिन सानुजा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका अर्थ यह है कि एक हाथ श्री बलराम जी पकड़े थे और दूसरा हाथ कृष्ण पकड़े थे। दोनों भाई कुछ आखिर ग्वाला हैं तो दूध का समान कुछ लिए, तो उनका भी एक एक हाथ खाली था, और बलराम और उनका अक्रूर जी के तो दोनों हाथ खाली थे। ऐसा लगता है जैसे गाय की सेवा में भगवान लगे हैं, बलराम जी लगे हैं, तो उनको फुर्सत नहीं है, परंतु अतिथि आए तो उसी समय, ऐसा नहीं कि गाय दुहाना अब जब बंद होगा तब घर ले जाएंगे, तब तक के बेचारे थके मांदे होंगे। कोई अतिथि आवे तो उसको ऐसा नहीं करके अपने कारखाना में ही बैठा दे और दो घंटा बाद में ले चलेंगे उसको। एक तो थका मंदा आया है और वहाँ मछी मारेगा तो वही पर काम बंद हो गया और ले चले दोनों भाई। कितना सुंदर दृश्य लग रहा होगा, एक हाथ कृष्ण पकड़े हैं और एक हाथ बलराम जी, तो ऐसे बगल से हाथ नहीं पकड़ कर चल रहे हैं, वो हाथ जोड़ना चाहते हैं अक्रूर जी। तो भगवान एक हाथ पकड़े ऐसे पकड़े हैं और श्री बलराम जी पकड़े हैं, दोनों जा रहे हैं, एक एक हाथ से इनके हाथ पकड़े। तो श्री बलराम जी बाएं हाथ से अक्रूर जी का दाहिना हाथ पकड़े और श्री कृष्ण अपने दाहिने हाथ से अक्रूर जी के बाएं हाथ को पकड़े। तो दोनों भाई के हाथ में जो किनारे किनारे हाथ थे उसमें समान था, गोदोहन संबंध, और एक एक हाथ से पकड़े थे अक्रूर जी को और वे चले घर। अनेत सानुजो गृह, घर लाए। क्यों हाथ पकड़े थे? क्योंकि अक्रूर जी में प्रेम के कारण अब चलने की शक्ति नहीं थी, तो दोनों भाई हाथ पकड़ करके चल रहे थे। ओहो, उस समय वीडियो कैमरा रहा होता है कितना सुंदर हुआ। चल रहे हैं, बातें करते जाते हैं, आपकी यात्रा ठीक रही, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? नहीं हुआ ले गए घर, पृष्ठवाथ स्वागतम तस्मै निवेद्य च बरासनम, पृष्ठवा स्वागतम च, ये रास्ते में ही पूछ लिए समझ। खिड़क से अपना घर नंदालय जितना दूर पड़ता था, वो सुंदर भवन जिसमें दोनों भाई रहते ले गए। तो रास्ते में ही समाचार पूछ लिए, सब ठीक है, कैसे रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको? आपको रास्ता पहले से मालूम था, कहीं पूछना तो नहीं पड़ा। आप अकेले आए, पहुँच गए, शरीर में इतना धूल कैसे लगा है? तो देखे थे कि हमारे प्रेम में ये रोए हैं, गदगद हुए। एक भक्त लिखते हैं कि भगवान के दर्शन के पहले यदि योग्यता चाहते हैं तो ब्रजरज शरीर में घसीए रोज भगवान मिल जाएंगे। अक्रूर जी को भगवान तब मिले जब ब्रज की मिट्टी पोते हैं शरीर में। ये योग्यता है कृष्ण को समझने। अरे पाउडर सेंट पेंट से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान मिलेंगे ब्रजरज से। अक्रूर जी ब्रजरज में लौटे हैं तो तुरंत भगवान का दर्शन, ददर्श कृष्णम रामम से। और मिट्टी लगा हुआ है शरीर में, रज लगी हुई है, पर वही व्यक्ति योग्य है। कृष्ण बलराम ले गए, कह दे चाचा जी ये कैसे धूल लग गई, कैसे कहाँ लौट, कहीं लौटे तो क्या है? ऐसे रथ पर आ रहे हैं तो इतने धूलि कैसे शरीर में है? तो पृष्ठवार्थ स्वागतम, आप आए बहुत अच्छा हुआ। हम लोग चाहते थे कि हमारा मथुरा से हमारा कोई संबंधी आ गया, आप आए बहुत अच्छा। इस तरह से कहें तो अक्रूर जी मनोरथ किए थे कि मैं भगवान का वचनामृत सुनूंगा, वो मुझे चाचा कहेंगे, तात कहेंगे, अक्रूर कहेंगे। भगवान ने सब कहा और आगे भी कहेंगे। और हस्त कमल का स्पर्श तो लगातार बहुत देर तक मिलता रहा जब गए घर। कितना सुख मिला होगा अक्रूर जी को भगवान का हाथ पकड़ कर। वह कोटि चंद्र सुशीतल कर कमल छूने में कैसा लगता होगा? तो ले गए दोनों भाई पकड़ करके और पूछे निवेद्य च वरासनम, बहुत ही श्रेष्ठ आसन पर बैठा है। वरासन से तात्पर्य है कि रत्नमय आसन, रत्नों का बना हुआ उस पर बैठा है। प्रक्षाल विधिवत पादव आसन पर बैठा करके और चरण है प्रक्षाल विधिवत, जो विधि है पहले किस चीज़ से चरण धोना, उसके बाद किस चीज़ से धोना, धोने के बाद ऐसे ही छोड़ देना कि तौलिया से पोछना, ये सब कुछ विधि है। तो जो विधि है उस विधि के अनुसार चरण धोया गया। और मधुपर कहीं पूजो प्रकरण था उसको दिया गया। तो सबसे पहले किसी अतिथि को दही में मधु मिला करके दिया जाता है और उसमें और क्या क्या डालते हैं, कर्पूर इलायची और क्या, उसको मधुपर्क कहते। ऐसा नहीं कि घर में अतिथि आया है और बस चाय दे दिया जाए, यही मधुपर्क चल रहा है। और फूक फूक करके टाइम पास करेगा। बहुत बड़ा स्वागत इसको लोग मान रहे हैं। और चाय के बर्तन का साइज भी रोज घटता जा रहा है, इतना छोटा छोटा होता है। अरे वो भी पीना है तो कम से कम पीना चाहिए पाव भर आधा किलो का। लगता है क्यों लोग मुख जला लेते हैं, इसी से तृप्ति हो जाती है। मधुपर्क इसलिए अक्रूर जी को अर्पण किया गया मधुपर्क। इसके बाद उनको गाय गोदान किया गया, गाय दान में दी गई। निवेद्य गाम चाहते था ये संवाह श्रांत मात्र, ये थके थे मतलब प्रेम में थके थे तो संवाहन किया गया उनका। मतलब अन्य जो सौभाग्यशाली घर में सेवक थे वे भी चरण दबा रहे थे। कृष्ण भगवान को तो मना कर रहे होंगे मना कर रहे, लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम जी कहते हैं चाचा जी अब निसंकोच सोइए, आप आराम कीजिए, आप थक गए हैं। तो भगवान तो समस्त सद्गुणों के आधार, एक अतिथि का और उसमें भी अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्य आए हैं तो उनका चरण दबाना धर्म है। श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि अक्रूर जी इसको स्वीकार नहीं किए होंगे तो भगवान कृष्ण और बलराम जी अन्य सेवकों के द्वारा चरण दबा रहे हैं और कृष्ण बलराम ज़्यादा से ज़्यादा केवल पंखा झल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। अन्नम बहुगुणम मध्यम श्रद्धा पर हरदि, तब श्री बलराम जी इसके बाद खूब बहु गुणम अन्न, खूब अन्न का भोजन का गुण क्या है, स्वाद और क्या है, स्वाद और जो शरीर में रक्त का संचार कर दे तुरंत, ऐसा बहु गुणम बहुत सुंदर भोजन परसा गया। सानुजह सब जगह लगेगा, भाई के साथ बलराम जी कर रहे थे, प्रधान हुए थे तो कृष्ण कोई गिलास उठा करके लाते होंगे, वो सोने की कटोरी लाते होंगे, उसमें कुछ खीर या जल अचार क्या क्या, गोविंद लीलामृत में इन सब पदार्थों का वर्णन किया गया है। जब बंगला में गाते हैं ना भजन गौर हरि, उसमें जो पदार्थ दिए गए वो सब आए, तो किसी को कृष्ण ला रहे थे, किसी को बलराम जी ला रहे थे, श्रद्धया उपहार, और श्रद्धा से कि अधिक से अधिक खाएं, अधिक से अधिक खाएं, थके बांधे हैं, ठीक हो जाएगा शरीर, इस तरह से दोनों भाई परोस रहे थे, खिला रहे थे, श्रद्धया उपहार, इसकी कामना उन्होंने किया था, क्या दोनों भाई मुझे भोजन कराएंगे, मेरा स्वागत करेंगे, भोजन के लिए नहीं लेकिन उन दोनों के इस लीला को देखने के लिए, जो हमसे कितना प्रेम करते हैं और किस तरह खिला रहे हैं। वास्तव में भोजन प्रिय नहीं था, लेकिन भोजन जिस हाथ से दिया जा रहा तो हाथ प्रिय था। जैसे बच्चे को माँ खिलाती है तो माँ के हाथों का जो स्पर्श है बच्चे के लिए वो दूसरी बात, और उसी भोजन को कोई दूसरा खिलावे तो कोई नर्स खिलावे या बेबी क्या कहें अरे बेबी सीटर तो लड़कों को पार्क में डाल दिया जाता, कहीं पार्क मतलब किसी घर में, और कोई दाई देखती रहती है, फिर लोग काम पर से आते हैं तो अपने लड़कों को उठा ले जाते हैं, तो वो जो खिलाएगी तो उसे क्या, वो बच्चों का स्वास्थ्य बने। अक्रूर जी भोजन करने के इच्छुक थे, लेकिन उनके भोजन करने की इच्छा इसलिए थे कृष्ण लाला का परोसेंगे, बलराम परोसेंगे, मैं देखूँगा इस तरह, तो वो सारे मनोरथ इनके पूरे हो रहे हैं। तस्मय भुक्त होते प्रत्या राम परम धर्मित मुख वासर गंधमाल्य परम प्रीति वेदात्म, और जब खा लिए आग्रह कर करके खिलाया जा रहा था, जब प्रसाद पा चुके, जो भोजन कर चुके, तो परम धर्म के ज्ञाता श्री बलराम जी ने उनको मुखवास दिया, इलायची लौंग या तांबूल आदि भोजन के बाद दिया जाता है, पान खिलाया, मुखवास जो मुख में सुगंध भर दे, वास भर दे, उसको मुखवास कहते हैं, और गंध माल ले फिर चंदन लगाए और माला पहनाए, खिलाने के बाद अतिथि को इस तरह से किए, और फिर से पुनः प्रीति उत्पादन किए उनके भीतर। परम धर्मविद का क्या अर्थ है कि वैष्णव की और अतिथि की ऐसे ही सेवा करनी चाहिए, इसको सिखा रहे हैं बलराम जी। एक तो देखिए अतिथि हैं, ये अतिथि की सेवा, केवल अतिथि भर हो तब भी बहुत बड़ी बात है, एक तो अतिथि, दूसरे एकादशी का पारण नहीं किए थे, द्वादशी के दिन कोई वैष्णवों को भोजन कराता है तो उसका बहुत फल होता है, क्योंकि एकादशी को उपवास करके शरीर टूटा रहता है उस वैष्णव, और वो अगर खाए द्वादशी को तो एक एक ग्रास पर आशीर्वाद निकलता है। तो द्वादशी को पारण कर रहे थे, वो अभी शाम हो गया था सवेरे में, एक तो अतिथि, दूसरे एकादशी व्रत करना, तीसरे वैष्णव। इसी तरह से जैसे बलराम जी ने स्वागत किया, ऐसे वैष्णवों का स्वागत करना चाहिए, इसी धर्म की शिक्षा दे रहे थे श्री बलराम जी, मानो ये आचरण कर खिलाए पिलाए सब। जब भोजन कराए तब तक भोजन कर रहे थे, तो इसके बाद नंद बाबा आए, नंद बाबा जब आए तब दोनों भाई अब चिंतित हो गए कि कहीं अक्रूर जी ये न भेद खोल दे कि हम लोग के पिता माता वहाँ रहते हैं, तो दोनों भाई संकेत किए, चाचा से बात किए और बाबा से कहे, तो बाबा तब आप दोनों भाई बात कीजिए, हम लोग थोड़ा जाए, और भगवान श्री नंद महाराज ने कहा तो जाओ तुम लोग खा लो, ये सवेरे गाय चराने भी जाना है, उनको क्या पता है कि अब आज ही भर गाय चराए थे, तो सवेरे तो जाना है, तो जाओ जाओ बेटा तुम लोग खाओ, इनके स्वागत में कुछ देर हो गई थी, ये लोग दोनों खाए नहीं, ये भगवान की सुशीलता है। तो भेज दिया नंद बाबा ने, और वे भी दोनों जाना भी चाहते थे। अक्रूर जी के सामने नंद बाबा से बात होते हो तो कोई बात मुख से निकल जाती। अगर अक्रूर जी अभी कह देते कि आपके पिताजी कारागृह में बंद हैं, कल से उनको बंद किया है, नंद बाबा सोचते आपके पिताजी। इसलिए दोनों भाई हट गए और ये दोनों भाई बात करने लगे। पपक्ष सत्कृतम नंद, जब सत्कार हो गया अक्रूर जी का पूरा पूरा, तब नंद महाराज आए और कहते हैं कथम स्थ निर्नुग्रहे कंस ज्योति दास। हे दासार, आप लोग कैसे हैं? कंस के जीवित रहते समय अब मैं समाचार क्या पूछूंगा? समाचार तो उसी दिन पूछूंगा कि ठीक है कि नहीं, जब कंस मर जाएगा। अक्रूर जी तो सुनते ही खुश हो रहे थे। बाहर नंद बाबा के मुख से ऐसा निकलने लगा, कंस का ये मरण चाहते हैं तो ऐसे महात्मा का मनोरथ सफल होकर के रहे। अक्रूर जी बहुत खुश हो गए। सबसे पहला समाचार पूछने में कहते हैं नंद बाबा, हम क्या समाचार पूछे? कंस के जीवित रहने पर हम क्या आप लोगों का समाचार पूछे? कंस के जीवित रहते रहते आप लोगों का कुशल वैसे ही नहीं है जैसे कोई कसाई भेड़ पाल करके रखा, तो आज नहीं कल तो मारेगा ही, मारने के लिए ही रखा है। सौन पालाई वावय अवय, अभी कहते हैं भेड़ बकरी कसाई भी रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, लेकिन उनको काट करके बेचने के लिए। तो कसाई जैसा है, और अब हम क्या कुशल पूछे? आज पूछें आज ठीक है, और कल ही किसी को मार दे। तो आगे कहते हैं कि अरे जो अपने बहन के पुत्रों को मार सकता है, और वही बेचारी रो रही थी फिर भी वो कसाई नहीं माना। अपने बहन के पुत्रों को जब वो मार सकता है तो आप लोग तो उसकी प्रजा हैं, बहुत दूर का संबंध है, कब क्या करेगा कोई ठीक नहीं, इस तरह से वे कह रहे थे। लेकिन बहुत सुंदर वचन से उन्होंने आश्वासन दिया, मनाया कि भगवान करे कि कंस मरे, आप लोगों का हित हो, इस तरह का मनोरथ कर रहे थे। और अक्रूर जी से जब इस तरह से बात कर रहे तो अक्रूर जी का सारा परिश्रम चला गया। यहाँ श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि संसार मार्ग का परिश्रम चला गया नंद महाराज से बात कर। रास्ते में तो कोई थकावट हुई नहीं थी, यहाँ अध्वय श्रमम का अर्थ है संसार श्रम, संसार मार्ग का श्रम चला गया। नंद बाबा इतना अच्छा बोल रहे थे, उनकी बातों से इन्हें बहुत संतोष हुआ अक्रूर जी को। इसके बाद अब नंद बाबा भी चले गए। दोनों भाई प्रतीक्षा में थे कि नंद बाबा कब हटेंगे, तो गुप्त वार्ता होगी। तो सुखोपविष्ट पर यंग के राम कृष्ण रुमानी, तो फिर नंद बाबा चले गए, दोनों भाई आए। बड़ा ड्रामा है कि उनके पास बात नहीं होनी चाहिए। तो रामकृष्ण के द्वारा बड़ा सत्कार हुआ था, सत्कार करने में राम प्रधान थे। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण शायद कम स्वागत कर रहे थे, क्योंकि उनको ये बात पसंद नहीं थी कि ये आए हैं हमको ले जाने के लिए, हम तो नहीं जाएंगे यहाँ से। कभी कभी भगवान मानो ऐसा विचार कर देते, हम तो नहीं जाएंगे, हम अपने पिताजी को छोड़कर नहीं जाएंगे, वहाँ बलराम जी को जाना है, जाएँ उनके पिताजी वहाँ रहते, हम उन्हीं को नहीं जाएंगे। शायद वो स्वागत में थोड़ा पीछे रहते थे, इसीलिए राम कृष्ण रुमानी था, बलराम जी ज़्यादा आदर कर रहे थे, कृष्ण भी कर रहे थे। लेभे मनोरथान सर्वन पथि ज्ञान सचकार, श्री बलराम और कृष्ण के द्वारा बहुत सम्मानित हुए हुए, और इसके बाद और जितना मनोरथ उन्होंने किया था रास्ते में, लेभे मनोरथान सर्वन, कोई मनोरथ बाकी नहीं रह गया। एक एक मनोरथ की पूर्ति कई बार भगवान ने किया, कई बार आलिंगन किया, कई बार हाथ का स्पर्श किया। जिस समय अक्रूर जी बैठे थे तो उस समय दोनों भाई कहते हैं चाचा जी अब दिन भर आए हैं, रोए हैं, तो आपके सिर में दर्द होगा, तो सहलाने के बहाने भगवान अपने हस्त कमर को उनके सिर पर रख रहे थे, सेवा के बहाने से। वैसे कैसे हाथ रखे, कोई बच्चा थोड़े अक्रूर जी की बार बार रख, लेकिन सेवा के बहाने रख रहे थे। और उस हस्त पंकज के स्पर्श का मनोरथ अक्रूर जी ने किया, तो लेभे मनोरथान सर्वन, सर्वन से तत्पर जो कोई बाकी नहीं रह जाए। पथि यान स चकार, यान मनोरथान पथि चकार तान सर्वान स लेभे। इस पर फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किमलभ्यम भगवती प्रसन्न श्री निकेतन तथापि तत्परा राजन नहीं वांछन्ति किंचन। अरे भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्या दुर्लभ है, वो तो भगवान तो सब कुछ देते हैं, तो कोई स्वर्ग मांगता है तो स्वर्ग देते हैं, धन मांगता है धन देते हैं, जो चाहिए देते हैं, मुक्ति देते हैं। और कोई भक्त यदि भगवान के श्रीअंग का स्पर्श चाहता है, उनके मुख से संबंध परक वाक सुनना चाहता है, तो क्यों नहीं पूरा होगा। जो जैसा मनोरथ करता है भगवान उसको देते हैं। इसीलिए जो असली भक्त होते हैं वे लोग सांसारिक संपत्ति नहीं चाहते हैं, भगवान से भगवान को मांगते हैं। जैसे अक्रूर जी, अक्रूर जी भगवान का स्पर्श आदि का मनोरथ किए थे, सब पूरा हो गया। इस प्रकार से इस भागवत सप्ताह का जो मुख्य विषय था अक्रूर जी की ब्रज यात्रा, वह यहाँ पूरी हुई। और कृष्ण बलराम जैसे लीला करते हों करते ही रहेंगे यहीं ब्रज में। अभी मथुरा का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बहुत सुख मिला इस कथा के द्वारा, पढ़ने में भी मेरे काफ़ी समय जाता था, और आप वैष्णव के भागवतों के सन्निधि में कृष्ण बलराम ने मुझे यह मौका दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का ऋणी हूँ। और भगवान कृष्ण बलराम को भी धन्यवाद देता हूँ, वही धन्यवाद के पात्र हैं। तो कई तरह से इसमें भक्तों ने सहयोग किया है, बाड़ी लगा है, मन लगा है, शरीर लगा है। कुछ भक्तों को देखता हूँ इसको सफल बनाने में लगे रहे, सब तरह से लगे रहे, और हमें बहुत प्रसन्नता हुई इस बार के हमारे मंदिर के अध्यक्ष महामना प्रभु और उपाध्यक्ष श्री सार्वभौम प्रभु जी रेगुलर आए। वास्तव में तो भगवान की कृपा है, और इन दोनों ने हमको बहुत मान दिया नीचे बैठ करके सुनना, और कभी कभी मेरे बहुत कठोर वचन भी निकलते रहते हैं। जैसे उस दिन मुझे पता नहीं था कल कि वो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, मैं सोचा कि कुर्सी बेंच बना रहे हैं इधर, तो मुझे क्रोध आ गया। मैं आज जानता कि भगवान के डेकोरेशन के लिए कर रहे हैं, तो मैं तो भूल करके ऐसे नहीं बोला, बोले डिस्टर्ब हो चाहे कुछ भी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। जो कल मैं बोल दिया कि यहाँ क्या ठक ठक हो रहा है, भगवत सेवा हो रही थी। तो इसी तरह के बहुत से कठोर शब्द निकलते ही रहते हैं, क्योंकि मैं एक नारकी जी, मैं भी नरक से ही आया। एक नरक से आने वाले का वर्णन किया गया है कि उसके मुख से बहुत कठोर वचन निकलता है, तो उन वचनों को भूल करके जो भागवत के वचन निकले हैं उसको ग्रहण कीजिएगा। और आप सभी वैष्णवों के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ कि मेरी मति कृष्ण बलराम के चरणों में लगी रहे। हरे कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वं पश्यन्ति नानाविपश्चितो ये विभर्षि रूपा अवबोधयात्मा क्षेमाय लोकश्चराचरस्य।
भगवान के गुणों का स्मरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, और वैसे तो भगवान का गुणगान किया जाए, श्रवण किया जाए, कभी भी सदा मंगल करता है, परंतु विशेष पर्व पर और विशेष देश में भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन और अधिक महत्व रखता है। इसी में भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य जन्म की कथा कह रहे हैं। कहते कहते यहाँ तक पहुँचे कि भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आ चुके हैं माता देवकी के। कंस देखने आया, वो समझ गया देवकी का तेज देख करके कि इसके गर्भ में भगवान आ गया, क्योंकि पहले ऐसी नहीं थी। कंस भी जानता था कि श्री विष्णु में बहुत तेज है, वो गर्भ में आ गए इसलिए देवकी का तेज बढ़ गया था, और देवकी प्रसन्न थी, तो देवकी का वध नहीं किया। उस समय प्रतीक्षा करने लगा कि जब बच्चा जन्म लेगा तो बच्चे को मार डालूंगा, अगर इस समय मारता हूँ तो बेचारी देवकी मर जाएगी, ठीक नहीं। देवकी के बच्चे पर कोई उसका मोह नहीं हुआ, छोह नहीं हुआ, देवकी से हो गया। एक तो ये स्त्री है, उसको मारना ठीक नहीं, और दूसरे मेरी बहन है, उस पर भी गर्भवती। कंस जैसा राक्षस भी देवकी को देखकर बदल गया, वो प्रतीक्षा करने लगा। देवता जितनी लालसा से प्रतीक्षा कर रहे थे उससे कम लालसा नहीं थी कंस की, लेकिन बच्चा को मारने के लिए वो जब प्रतीक्षा कर रहे थे। और दूसरे लोग मनुष्य आए तो सो लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन वह तो सोता नहीं था एक सेकेंड। आसीन सम विशुष्टिंस्टन भुंजान पर्यटनमय चिंतयान हसी केशम अपश्य तन्मय जगत। खाते समय भी कृष्ण का चिंतन करता, कहीं आकर के हमको मार न दे, देवकी के गर्भ से प्रकट होकर के और आकर के हमको मार न दे। सम विशंस लेटता था तो उस समय भी उसको भगवान का भय बना रहता, सोता नहीं था। सम विषम का अर्थ है इसे हाथ करके लेटा, सो यही चिंतन करता रहता, धक धक कलेजा करता रहता था, मार न जाए। इतना कृष्ण भावना भावित तो भक्त लोग भी नहीं होते, लेकिन विरुद्ध भाव से थे। तिष्ठन खड़ा रहता था तब भी चिंतन करता था, भुंजान कुछ खाता था तब भी डर लगता था। नारद जी ने कह दिया था कि अरे विष्णु का कोई ठीक नहीं, कहीं से भी प्रकट हो जाएगा, तो ऐसे कवर डालने में उस भात रोटी से डरता था कि इसमें से विष्णु ना आ जाए, इतना भय था कंस। भयात कंस, कंस का मन भय से लगा था भगवान में, यह प्रतीक्षा कर रहा था। इसके बाद जिनके प्रार्थना से, जिनके प्रस्ताव से भगवान अवतार ले रहे हैं वे ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र और ऋषियों में श्री नारद आदि, ये सब आए कंस के कारागृह में अलक्षित रूप से। मनुष्य उन्हें नहीं देख सकते थे, परंतु वे सबको परस्पर देख रहे थे। अच्छा, उनके लिए आवश्यक नहीं है कि वे जमीन पर तो पैर देते ही नहीं, भूमि पर पैर नहीं देते हैं देवता। देवताओं के शरीर की दो विशेषता होती है, एक तो उनकी पलकें नहीं गिरती हैं, इसलिए उनको अनिमिष कहते हैं, निमिष नहीं है, और वे भूमि पर पैर नहीं देते हैं। आकाश में रहने वाले जीव हैं, जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहना स्वाभाविक समझते हैं, आकाश में चढ़ेंगे तो धम से गिर जाएंगे, तो देवता लोग जोर लगा करके भी जमीन पर नहीं आ पाते हैं, आकाश में ही उनका शरीर रहता है। और उनका सूक्ष्म शरीर है अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ प्रधान, तो दिखाई नहीं पड़ते हैं मनुष्य, तो शरीर खचाखच भर गया आकाश कंस का कारागार, लेकिन एक मनुष्य नहीं देख रहा था कि देवता है। और देवता रहते हैं, हम देखें या ना देखें, वैसे तो प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक जीव के इंद्रिय पर भी देवता रहता है, लेकिन कोई देखा है आज तक? अब यहाँ हाथ में भगवान इंद्र हैं तो इंद्र से ही खैनी मलवा रहा है, देवता क्यों नहीं दुखी होंगे? ये हाथ है, हाथ में इंद्र देवता रहते हैं ऐसा कहा गया है। जब कोई व्यक्ति मृदंग बजाता है या माला गूंजता है, भगवान का श्रृंगार करता है, मंदिर वादन करता है, इंद्र देवता प्रसन्न होकर के अपने सारे गुणों को भर देते हैं उस भक्त में। जत्रास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्व गुण तत्र समा सकते सुरा। जहाँ भगवान की भक्ति होती है तो सारे देवता वहाँ आते हैं और अपने अपने गुणों के साथ आते हैं, और जो भक्ति नहीं करते हैं वहाँ तो देवता आते नहीं है, सारा अपना दुर्गुण भेज देते हैं वहाँ। यह टीका में बात लिखी है। और जिह्वा में अग्नि देवता का निवास, इस जिह्वा पर कोई व्यक्ति यदि बिना भोग लगा हुआ पदार्थ रखता है, अग्नि देवता बहुत रंज होते हैं, क्या करे? अब वो वास किए हैं, खाना पड़ेगा। और सरस्वती जी वाग इंद्रिय पर रहती है। जिह्वा के दो कार्य हैं, एक तो रस से लेना और दूसरा वाइब्रेशन बोलना। तो बोलने वाला जो डिपार्ट है वो सरस्वती जी का है। कोई व्यक्ति जब बोलना चाहता है तो पहले सरस्वती जी सैंक्शन करती है, अतः भगवान का ही गुणगान करना चाहिए, नहीं तो सरस्वती जी बाद में इतना रंज होंगी कि फिर ऐसा शरीर मिलेगा कि एक शब्द भी नहीं गा पाएंगे, बोल पाएंगे। तो कुत्ता का शरीर मिल जाएगा तो केवल भों भों करेंगे बस, और कोई राग रागनी से कोई तत्पर नहीं। ऐसे तो पहले वो शरीर मिला होगा मनुष्य का, लेकिन उस समय सिनेमा का गीत गाया होगा, वो तो शरीर चला जाएगा, कंडम शरीर मिलेगा। कोई कोई तो शरीर ऐसा है कि जीवन भर बोल ही नहीं सकते उस शरीर में, कोई आवाज नहीं। ये दंड होता है प्रकृति के द्वारा। तो मैं ये कह रहा हूँ, देवता तो हम सबके इंद्रियों पर भी हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, तो कंस के कारागृह में आ जाए तो कैसे दिखाई देंगे? सभी आए, ब्रह्मा भवश्च तत्रेतर मुनिभिर नारदादि। ब्रह्मा और भव ये दो प्रधान हैं, इन दोनों के प्रस्ताव से भगवान अवतार ले रहे, और नारद आदि मुनि, शंकरादिक मुनि आदि ये सब थे। इन सब लोगों ने भगवान के अवतार के लिए बहुत प्रयास किया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस चतुर्दश भुवन के एक प्रकार के कृषक हैं। तो उन्होंने देखा, जैसा वृषणम शब्द आया है, वर्षा करने वाला आ गया गर्भ में, तो चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस भुवन चतुर्दश के किसान हैं और उनकी खेती सूख रही थी इस घनश्याम के बिना, वर्षा करने वाले के बिना, जो लीलामृत की वर्षा करेंगे, दैत्यों का वध करेंगे। जैसे किसी किसान की खेती सूखने लगे और बादल छा जाए और यह आशा हो जाए कि अब बादल घमासान वर्षा करेगा, तो किसान कितना खुश होगा। इसी तरह से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि अब उनकी खेती के लिए घनश्याम आ करके वर्षा करेंगे। ब्रह्मा जी को तो किसान कहा गया, वे बहुत प्रसन्न हो गए, और बादल को देख करके, घनश्याम को देख करके मयूर नाचते हैं। भगवान शिव मयूर की तरह तांडव नृत्य आदि कर्म जानते हैं, बहुत नाचते हैं। तो जैसे मयूर हर्षित होता है बादल को देखकर, ऐसे भगवान शिव हर्षित हो गए, जो भगवान गर्भ में आए या अवतार लेंगे। और श्री नारद आदि ऋषि चातक पक्षी की तरह थे, जो बादल की कामना कर रहे थे, जान गए कि हम देवकी के गर्भ रूपी आकाश में या घनश्याम छा गया, अब पानी बरसेगा, हमारी प्यास बुझेगी। इस तरह से सभी देवता ऋषि मुनि अलक्षित रूप से कंस के कारागृह में आए और आकर के गिरभिः भृशणम् आयडयन्, आयडयन का अर्थ है स्तुवन, स्तुति करने लगे भगवान जी। यही है वास्तव में कर्तव्य। भगवान को जो करना है तो करते हैं, लेकिन जीव का धर्म है भगवान का यश गाना। गायन की देवा जगसे संबंधो, देवता सदा भगवान का यश गाते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।
भगवान ने अपना वचन सत्य किया। बहुत वर्ष पहले वे कहे थे आकाशवाणी में, हे देवताओं आप भयभीत मत होइए। ब्रह्मा जी से कहा था उन्होंने, मैं अवतार लूँगा, वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो जो बहुत पहले वचन दिया था भगवान ने उसको सत्य किया, देवकी के गर्भ में आ गए। भगवान के इस सत्य व्यवहार को, सत्य वचन को देखकर देवतागण बहुत संतुष्ट हुए और सबसे पहले सत्य के रूप में भगवान की स्तुति कर रहे। देवता बहुत प्रसन्न थे, इसलिए देख रहे इस श्लोक में केवल सत्य 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 लगा है। सत्य व्रतम अंत में कहते हैं, वयम शरणम प्रपन्ना, हे नाथ हम सब आपकी शरण में हैं। ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ जो शरण में हम हैं, इसमें जो बोल रहे हैं, तो सबसे ऊंची आवाज अथवा माइक पर भगवान शिव और ब्रह्मा जी हैं, और देवता लोग ऐसे ही बोल रहे हैं साथ में, लेकिन मुख्य आवाज़ ब्रह्मा जी की है, शिव जी की है, इसके बाद नारद जी। ये सब कहते हैं हम आपकी शरण में हैं, शरण में है। एक बच्चा गर्भ में है और ये देवता उसकी शरण में है। जब गर्भ की स्थिति कैसी होती है, मनुष्यों का बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसकी हालत बहुत खराब रहती है, बहुत खराब। ऐसा लिखा गया है कि अगर बच्चा गर्भ में रहता है तो उसमें माँ यदि कहीं ऊंचा चढ़ती है, खास करके नीचे उतरती है थोड़ा भी, तो लगता है बच्चे को कि आकाश से हम गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसका अनुभव होता है। इसे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है और ऋषियों ने भी इसको बताया है। उसमें बच्चे की जो दशा होती है, ऐसा लगता है कि बहुत ऊंचा से गिर रहा है, पहाड़ से गिर रहा है। और जब कुछ खाती है तो उसका तीता या खट्टा रस जब बच्चे के शरीर में लगता है तो उसमें मर्माहत पीड़ा होती है, लगता है कि उसके देह में कोई सूल चुभा रहा है, इतना टेंडर शरीर रहता है। इसलिए गर्भवती स्त्री के लिए बहुत नियम बताए गए हैं, ढंग से रहने का, खान पान आदि व्यवहार। तो यह तो जीव की दशा होती है, वो गर्भवास जो है एक बहुत भारी कारावास से कोटि गुना दुखद स्थान। तब जरा विचार कीजिए कि संसार के ये सब मुक्त देवता अधिकारी वर और साप देने में समर्थ, ये लोग एक बच्चे की शरण ले रहे हैं, तो बच्चा विलक्षण है ना। भागवत पढ़ने वाला कोई भी बुद्धिमान आदमी समझेगा ये क्या बात है भाई, कि सारे देवता आ करके देवकी नंदन की शरण ले रहे हैं, देवकी के पुत्र की शरण ले रहे हैं, क्या बात। और ये सब कथा सुनने के बाद भी कोई संशय करे और ये कह दे कि हाँ हाँ जैसे शिव जी हैं ब्रह्मा जी हैं वैसे ही विष्णु हैं कृष्ण हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कि तुमको दिमाग ही नहीं है कुछ भी समझ में, लोग क्या कहें। अब ये भागवत पढ़ पढ़ करके वो लोग नहीं समझते, भगवान चाहे गर्भ में रहें चाहे वैकुंठ में रहें या वृंदावन में रहें, कहीं भी भगवान भगवान है, उनकी शक्तियाँ उनका प्रभाव जीव का त्यों रहता है। गर्भ में भी रह रहे थे तो वैकुंठ में ही थे, माँ का गर्भ वैकुंठ बन गया था। देवता लोग शरण ले रहे तो कहते हैं सत्यम व्रतम संकल्पो जस्य तम, भगवान का संकल्प सदा सत्य होता है। सम का अर्थ होता है सम्यक, और कल्प का अर्थ होता है इच्छा, संकल्प। और प्रत्येक जीव अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प से भरा हुआ है। संकल्प का अर्थ होता है कुछ अनुकूल भाव से सोचना, कुछ पाने के लिए अच्छा है इसको संकल्प कहते हैं, और ये अच्छा नहीं है हमको नहीं चाहिए इसको विकल्प कहते हैं। विपरीत कल्प और सम्यक कल्प से कल्प वृक्ष कहते हैं। एक वृक्ष बोलते उसका इच्छा वृक्ष, अपनी इच्छा को पूरा करता है। तो भगवान का व्रत सदा सत्य होता है, भगवान का संकल्प सदा सत्य होता है, जो सोचते हैं उसी समय हो जाता है, उनके सोचने में और कार्य होने में देर नहीं होती। परंतु इसके अलावा देवताओं का या मनुष्यों का सोचना और कार्य होना दोनों दो है, और सोचेंगे संकल्प करेंगे 99% 100%, तो उसमें 1% भी काम हो नहीं पाता। जितना संकल्प जीव को उठता है उसमें से संकल्प पूरा नहीं हो सकता। संकल्प तो छोड़ दीजिए, वो प्लान बनाएगा, बहुत उपाय करेगा, फिर भी पूरा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बड़े पद पर है और कहीं उसका प्रोग्राम है, हेलीकॉप्टर से जा रहा है, लेकिन प्रोग्राम स्थल पर लोग जो होते बेदम होते हैं, प्यास लगी रहती है, और टाइम दिए हैं 12 बजे पहुंचने का, तो साहब 7 बजे शाम को पहुंचते हैं। फिर एक संतोष हो जाता है, चलो इस कारण से लेट हो गया, फ्लाइट लेट हो गया, ये लेट हो गया, वो लेट हो गया। तो संकल्प तो सत्य हुआ नहीं। असत्य व्रतम, इस संसार के सब लोग ऐसे हैं, संकल्प पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य के ऊपर प्रकृति का दबाव है। कोई आदमी बड़े बड़े शहरों में निकले कि हमको वहाँ जाना है, ऑफिस में जाना है, इस टाइम जाना है, तब तक उसको कंट्रोल करने लगता है ट्रैफिक लाइट और जाम। अब वो क्या करे, अपनाता है कुछ भी, पुलिस विभाग को ट्रैफिक विभाग को गाली दे मन ही मन, चाहे कुछ भी करे, लेकिन इतना प्रकट काम नहीं हो पाता है। और क्या कोई काम करेगा, किसी को शक्ति है मनुष्यों में, वो कह दे कि ठीक है आप हमको चाहते हैं तो हम अगले जन्म में आपके घर आ रहे हैं। ये पता है कि हम कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे पता है? ये भी पता नहीं था कि हम लोग यहाँ जन्म लेने वाले हैं, अपनी स्थिति का पता नहीं, क्या सत्य संकल्प होगा? भगवान सत्य संकल्प है। हे कृष्ण, हे नाथ, आपका व्रत सदा सत्य होता है और आपकी प्राप्ति का साधन सत्य है। तो भगवान ये देवताओं के कहने का आशय है, हे प्रभु आप भक्ति से प्राप्त होते हैं, इसीलिए भक्ति योग सदा सत्य है, बाकी दूसरे साधन असत्य हैं। भगवान का नाम गुण लीला का कीर्तन करना, श्रवण करना, वास्तव में यही सब सत्य है, बाकी सब असत्य है, किसी कार्य का नहीं। भगवान सत्य साधन से मिलते हैं, अर्थात भगवान की प्राप्ति के जो साधन शास्त्रों में बताए गए हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम इत्यादि, यही सत्य है। त्रिसत्यम, हे प्रभु आप सृष्टि से पहले भी इसी रूप में थे, अपने लीला परिकरों के साथ वैकुंठ में विहार कर रहे थे, सृष्टि जब होती है तब भी आप अपने धाम में रहते हैं, और सृष्टि नष्ट हो जाती है तब भी आप अपने धाम में रहते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय यहाँ होता है, भगवान के धाम में नहीं होता, इसको त्रिसत्यम कहते हैं। वैसे रहने के लिए तो हम लोग भी रहेंगे, इस जन्म के पहले भी हम लोग थे और बाद में भी रहेंगे, लेकिन इस रूप में नहीं रहेंगे। शरीर बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा, भाषा बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। हम रहेंगे लेकिन व्यभिचारी रूप से रहेंगे, भगवान अव्यभिचार दृढ़ नित्य एक समान रहते हैं। तो सबसे पुरातन पुरुष है, अनादि काल से हैं, लेकिन भगवान के परिवार में एक व्यक्ति भी आज तक मरा नहीं। त्रिसत्य भगवान के पिताजी रह गए, माँ रह गई, और वे जिसके पुत्र हैं पुत्र रह गए। वैकुंठ में एक भी व्यक्ति परिवार से अलग नहीं होता है, सत्य की जो नहीं है। सत का अर्थ है भूमि जल अग्नि और त्य का अर्थ है वायु और आकाश। श्रीधर स्वामी ने अर्थ किया तो भगवान सत्य के सत्य की योनि है, इस जगत को उत्पन्न करते हैं और इसको उत्पन्न करके फिर परमात्मा रूप से उसमें निवास करते हैं। निहितम च सत्य, इस विश्व के भीतर निवास करते हैं। हे नाथ, अब सत्य के भी सत्य हैं, सत्य से सत्य, सत्य के भी सत्य हैं और आप ही समदर्शी हैं। एक दृष्टि से, एक भाव से सबको देखने वाले आप हैं, अथवा किसी वस्तु के वास्तविक तत्व को समझने वाले आप हैं और किसी वस्तु के किसी तत्व का निरूपण करने वाले भी केवल आप हैं। आपके अतिरिक्त यथार्थ बोलना कोई नहीं जानता है और आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जिसको किसी वस्तु का, अपना, जगत का या आपका यथार्थ ज्ञान हो। इसको कहते हैं ऋतसत्य नेत्र। नेत्र का अर्थ प्रवर्तक। हे नाथ, आप ही ठीक ठीक बोलना जानते हैं और दूसरा कोई व्यक्ति क्या बोलेगा? ज्ञान ही नहीं है तो बोलेगा क्या? और ज्ञान भी होने पर कितना शब्द बोलना चाहिए उस विषय में, कैसे प्रकट करना चाहिए, उसको भी नहीं जानता। ये भगवान प्रमाण है किसी चीज़ का रहस्य जानने में और उसका निरूपण करने में। सत्यात्मकम सत्यम आत्मा श्री मूर्ति यस्य स, भगवान का श्री विग्रह सत्य है, सत्यात्मा कहते हैं भगवान। आत्मा का अर्थ होता है स्वरूप। भगवान के देह में और उनके स्वरूप में भेद नहीं है। जीव के देह में और जीव में बहुत भेद है। जीव देह को छोड़कर चला जाएगा, देह यहाँ नष्ट हो जाता है, लेकिन श्री भगवान का ऐसा स्वरूप है कि वे कभी देह छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो देह ग्रहण नहीं किए हैं। देह देही का भेद नहीं है। नख से सिख तक श्री कृष्ण पूर्ण चिदगण है, चिन्मय है। इसको सत्यात्मा को सत्य सत्यात्मकम तो हम शरणम प्रपन्न, तो हम सब आपकी शरण में हैं। जैसे दो चार बच्चे अपने माँ से, पिताजी से विनय करे, उस तरह से देवता लोग भगवान की शरण ले रहे हैं। भागवत के प्रत्येक श्लोक में भगवान की महिमा गाई गई है। देवता लोग आया करके भगवान की शरण ले रहे हैं। जो भगवान गर्भ में है, देवता लोग शरण ले रहे हैं, लेकिन मूर्ख मनुष्य लोग क्या बोलते हैं, भगवान हो करके वो गर्भ में कैसे गए? कभी कभी ऐसी बात याद आती है कि वो जब गर्भ में जा रहे थे तो तुम नहीं थे, नहीं तो पूछे होते कि कैसे जाना चाहिए। जो किसी का पुत्र हो सकता है तो वो भगवान कैसे है? जाकर के ब्रह्मा जी से तर्क करो कि वो पागल हो गए हैं, शिव जी पागल हो गए हैं, क्या बात है। अपनी मूर्खता व्यक्ति नहीं समझता है। यदि यह कोई कहे कि वसुदेव जी का पुत्र कैसे भगवान है, देवकी का पुत्र कैसे भगवान है, तो यह प्रकारांतर से ब्रह्मा जी को मूर्ख कह रहा है, ब्रह्मा जी को पागल कह रहा है, शिव जी को पागल कह रहा है, ब्रह्मा जी को पागल कह रहा है, नारद जी को भी भटका हुआ कह रहा है और अपने को महापंडित समझ। यहाँ भगवान की शरण ले रहे हैं सारे देवता। तो जब सारे देवता भगवान कृष्ण के ही कृष्ण की शरण ले रहे हैं, भक्त हैं, तब क्यों नहीं भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए? यह विवेक है। शरणम प्रपन्न, हम सब आपकी शरण में हैं। प्रपन्न, हमारी रक्षा कीजिए। तो इस पर मानो भगवान यह कहें, अरे भाई आप लोग भी तो लोकेश्वर हैं, बहुत ईश्वर आप लोग भी हैं, संसार की देख रेख करते हैं, कमांड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो देवता लोग कहते हैं नहीं नहीं हे नाथ, हम कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो इस सारे विश्व को एक वृक्ष के रूप में कह करके ये कहते हैं, एकाय नौ सौ द्विफलस त्रिमूलस चतुरस पंचविधा सदात्मा सप्तत्वगस्त बिटको नवाक्ष दश छदो दिखो यदवृक्ष। यह संपूर्ण समष्टि व्यष्टि जगत एक अयन पर टीका हुआ है, एक अयनम प्रकृति जस। यह सारा विश्व बना कैसे है, भगवान की एक शक्ति से बना है जिसे प्रकृति कहते हैं। जो कोई वृक्ष है कहीं ना कहीं खड़ा रहता है, इसको आल बाल या थाला कहते हैं वृक्ष। तो यह संसार कहाँ टीका है, किससे बना हुआ है, तो प्रकृति ही इसका अयन है। एकायन द्वि फल, और इस संसार वृक्ष के दो फल है, सुख और दुख। प्रत्येक व्यक्ति इस फल को भोगता है पूरे संसार में, चाहे स्वर्ग हो या पाताल लोक हो, नीचे का लोक हो या कहीं, दो तरह के फल सब जगह मिलते हैं सबको, सुख और दुख। कभी कभी व्यक्ति अनुकूल भाव से सुख का आस्वादन करता है, कभी कभी छटपटाता है, रोता है, दुख होता है। स्वर्ग में भी, स्वर्ग में भी सब समय सुख नहीं रहता है, वहाँ भी कभी कभी दुख का फल भोगना पड़ता है। तो नरक में जाना पड़े किसी कर्म के कारण, तो स्वर्ग में जाना पड़े और अमृत पीने को मिले, विमान पर घूमने को मिले, इसको फल क्यों कहा गया? फल का अर्थ है परिणाम, रिजल्ट। प्रत्येक कर्म का फल बनता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ड्राई फ्रूट चाहे गीला फ्रूट बनेगा। प्रत्येक कर्म का अपना एक रिजल्ट होता है जिसको फल कहते हैं। तो दो प्रकार के फल, सुख और दुख। एकाए नौ सौ द्विफलस त्रिमूलस, तीन इसके मूल हैं, सत्गुण रजोगुण तमोगुण, तीन इसकी जड़ें हैं संसार वृक्ष के। इसी पर टीका है चतुरस, और इसके चार रस हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस शरीर से या इस संसार में ये चार चीज कमाया जा सकता है, धर्म किया जा सकता है, इसे स्वर्ग कमाया जा सकता है, और फिर धर्म के अनुसार रुपया पैसा, घर द्वार, और इंद्रिय तृप्ति, और अंत में मोक्ष। इसको चार रस कहा गया है, चतुरस पंच विध। विध का अर्थ होता है ज्ञान प्रकार। पांच तरह से इस संसार को जाना जाता है, इस संसार के पांच प्रकार है इसको जानने के। इसके शब्द को जानते हैं कान से, इसके गंध को जानते हैं नासिका से, रूप को जानते हैं आँख से, और इसके स्पर्श को जानते हैं त्वग इंद्रिय से, और इसके रस को जानते हैं जीवा से। इस संसार के पांच ये विषय हैं, जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श, प्रत्येक जीव को इंद्रियां दी गई हैं संसार का अनुभव करने के लिए। इस संसार को जानने के पांच प्रकार हैं, षडूर्मय, पंचविधा, षडात्मा, और इसकी छह उर्मियाँ हैं, या इसके छह स्वभाव हैं। आत्मा का अर्थ होता है स्वभाव। इस संसार में प्रत्येक शरीर या लोक के छह स्वभाव हैं, ये रहेगा। इस छह स्वभाव क्या स्वभाव है? पहला एक तो स्वभाव है कि यह जन्म लेगा। कोई चीज़ है संसार में भगवान के द्वारा रेडीमेड नहीं आती है, और जिसको इस संसार में रेडीमेड कहते हैं वह अभी दुकान में रेडीमेड रहता है, वह भी कहीं कहीं बनाया जाता है, उसके पहले रेडीमेड नहीं रहता है ना। पहले रेडीमेड नहीं रहता है ये जो शरीर खास करके मिलता है जीव को, तो कहीं भी रेडीमेड शरीर नहीं है। उसको बनने में बहुत टाइम लगता है गर्भ में, और फिर जन्म लेने के बाद भी यह पियो या दवा खाओ ये करो करो, बीच बीच में बीमार हो जाता है तो फिर अस्पताल में इसकी मरम्मत होती है। तो जो भी हो जन्म लेना ये इसका स्वभाव है, जायते सो जन्म कहते, और वर्धते और वृद्धि को प्राप्त होते, बढ़ता है जन्म लेकर के बढ़ता है। जैसे वृक्ष पहले अंकुरित होता है, पौधा होता है, फिर बढ़ने लगता है। तो इस तरह से शरीर या पूरा वेश धीरे धीरे बनता है और बढ़ता है, भी परिणाम होते हैं और कुछ इसके परिणाम होते हैं, फल देता है, बच्चा उत्पन्न करता है। बढ़ना और भी परिणत होना दोनों में अंतर है। इस शरीर से कितने भी परिणाम निकलते हैं, जैसे केस है, इस शरीर से केस निकलता है, नख निकलता है। यदि नखों को आप काटिए और पूरे जीवन का नख जोड़ा जाए तो कई फीट लंबा हो जाएगा। सबको रखा जाए काट काट करके साथ साथ दस दस दिन पर एक एक महीने, कई फीट लंबा नख हो गया। इस शरीर से नख निकलते, केस निकलते, और केस को भी यदि ठीक से रखा जाए तो ये तो कई मीटर बढ़ सकता है, चला जाएगा। और शरीर में भी बहुत से परिणाम हैं, और जो मल मूत्र आदि है वो भी शरीर के परिणाम, तो बच्चा आदि सब परिणाम। तो कोई शरीर कुछ काल तक रहता है, हाँ ये परिणाम देता है, और तिष्ठते, जन्म से मृत्यु तक जो स्थिति है उसको तिष्ठन करते हैं, ठहरता है, और अंत में स्वभाव है क्षीयते, क्षय होता है, शरीर अंत में क्षीण होने लगता है, इसको बुढ़ापा कहते हैं, धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, अंत में नश्यति, नाश समाप्त हो। तो इस संसार का एक छह स्वभाव है, देवता लोग कह रहे हैं षडात्मा। यह आत्मा का अर्थ उर्मीय किया जाएगा तो इस संसार का स्वभाव है जन्म मृत्यु भूख प्यास और शोक मोह, इस छह स्वभाव है। जन्म होता है और मरना पड़ता है, ये तो दो आत्मा विकार, और भूख और प्यास लगे, सबको भूख प्यास लगती है, जन्माष्टमी पर तो अनुभव करते ही होंगे कि जानबूझ करके सहना चाहिए। अच्छा है, जानते हैं उपवास की सबसे बड़ी महिमा क्या है? उपवास की सबसे बड़ी महिमा है कि अन्य सारी कामनाएं चली जाती हैं, जो कामनाएं बड़े बड़े साधनों से नहीं जाती हैं वो उपवास करने से चले जाती हैं। जब दो दिन आदमी को कुछ खाने पीने को न दिया जाए तो खाने पीने के अलावा कोई कामना उसके मन में नहीं रहेगी, और प्लान और विचार सब खत्म हो जाता है, केवल यही सोचा रहे पानी पीने को, दो खाने को तो छोड़ो। तो उपवास में यह गुण है, सचमुच उपवास करना चाहिए। कोई कहे कि आखिर खाने की इच्छा तो बनी रहती है, तो केवल यही इच्छा बनी रहेगी ना, और उसको भी पूर्ति, उसकी पूर्ति करनी नहीं है, और तो कामना नहीं रहेगी। एक कामना इतनी प्रबल हो जाएगी कि अन्य कामनाओं को जला, बहुत शुद्धि होती है, और पाचन संस्थान को भी आराम मिल जाता है, शरीर में जो पचाता रहता है मशीन रात दिन, उसको भी आराम मिल जाता है, विश्राम मिल जाए उसको तो ठीक है। सप्तत्व और इस संसार वृक्ष के सात धातुएं हैं, जैसे रक्त मांस मज्जा मेद हड्डी बीज, यानी ये सब सात धातुएं मानी जाती हैं, तो अष्ट बीटक और संसार वृक्ष के आठ पत्ते हैं, आठ प्रकार, पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार आठ पत्ते हैं, नवक्षदी नवाक्ष इसके नौ द्वार हैं, इस वृक्ष में नौ खोण हैं, कोटर हैं, ऐसा कहा गया है, जैसे शरीर में नौ छेद हैं, सामने भगवान ने बनाया है पांच, दो आँख दो नाक और एक मुंह, पांच और दो साइड में सात और दो नीचे, इसको नवाक्ष कहा गया। और दशच्छदी इसके दस प्रकार के पत्ते हैं, और मैं बीटका कहा उस शाखा है, इसकी आठ प्रकार की हैं, आठ शाखाएं हैं और दस पत्ते हैं, दस प्रकार के पत्ते हैं, प्राण अपान व्यान उद्यान क्रिकलास कूर्म धनंजय, सब कई प्रकार के प्राण हैं शरीर में, तो इनको इसके दस पत्ते कहे गए, उन्हीं पर टीका है, पत्ता झड़ा के जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, तार दिन तेरे तन तरवर के सबय पात झड़ जाए, ये सूरदास जी ने गाया है। प्राण पर ही टीका लगे, हवा पर ही शरीर टीका लगे, 10 प्रकार की हवा कंट्रोल कर रहे शरीर की। द्वि खग, और इस संसार वृक्ष पर इस शरीर में दो खग रहते हैं, एक परमात्मा और एक आत्मा, दो खग। खग इसलिए कहा गया है कि इस वृक्ष गिरेगा तो वो लोग तो आकाशगामी हैं ही, ख में चलने वाले होते हैं तो वो तो उड़ जाएंगे, जीव भी उड़ जाएगा, भगवान तो खैर इसमें आसक्त है ही नहीं। बराबर प्राण की उपमा या आत्मा की उपमा पक्षी से दी गई, पक्षी जैसे प्राण पर से उड़ जाता है ऐसे एक दिन आत्मा उड़ जाएगी। का कर्म पाई पाई राई राई जोड़ के उड़ जाए सुगना पिंजड़वा के छोड़। तो वृक्ष कहा जाता तो वो भी अच्छा होता है, पिंजड़ा कहा गया है, पिंजड़ा में जैसे सुगा पक्षी बंद है एक दिन उड़ जाएगा, और पिंजड़ा क्या होगा ऐसा नहीं कि दूसरे सुगा के लिए रखा जाएगा, इसको जला दिया जाएगा, चाहे मिट्टी में डाल दिया जाएगा चाहे पानी में फेंक, और सूगा गया दूसरे पिंजरा में, कर्म बंधन में है तब मुक्त हो गया, तब तो फ्री घूमेगा, कोई पिंजरे की कोई जरूरत उड़ेगा। द्विख दो याद वृक्ष, यह आज वृक्ष है, वृक्षते काले न छिद्यते वृक्ष, वृक्ष को इसीलिए वृक्ष कहते हैं कि वह काटा जा सकता है। तो इसी तरह से संसार का एक दिन नाश होता है, नष्ट होता है, चाहे शरीर हो चाहे पूरा विश्व हो। तो तुम्हें कई वास सतह प्रसूति तमसन निधानम तमनु ग्रहश्च, हे नाथ केवल आप ही से इस जगत का प्रकृष्ट प्रसव हुआ है, आप इसको जन्म देते हैं और आप इसको संयम में रखते हैं, पूरे विश्व को, विश्व से मतलब विश्व के जितने जीव हैं सबको आप जन्म देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं और अंत में समाप्त करते हैं।